नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अगस्त को गया जी में आयोजित समारोह के दौरान 13,000 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 130वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया। भ्रष्टाचार के मामलों में 30 दिनों की जेल होने पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को पद से हटाने का किया गया है प्रावधान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 6.5 लाख से अधिक बाढ़ पीड़ित परिवारों के खाते में 7,000 रुपए की अनुग्रह राहत राशि भेजी। और प्रधानमंत्री जनधन खातों का 30 सितंबर तक सत्यापन किया जाना अनिवार्य। केवाईसी नहीं कराने पर बंद होंगे खाते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अगस्त को गया जी में आयोजित समारोह के दौरान 13,000 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मोकामा के ओटा और बेगूसराय के सिमरिया के बीच गंगा नदी पर नवनिर्मित 6-लेन पुल का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दौरे के दौरान बिहार को कई सौगात देंगे। इनमें सबसे प्रमुख है ओटा सिमरिया 6-लेन पुल। करीब 34 मीटर चौड़ाई वाला यह पुल देश का सबसे चौड़ा 6-लेन पुल है। 2 किलोमीटर की लंबाई में बना यह पुल मौजूदा 2 लेन वाले पुराने रेल सह सड़क पुल राजेंद्र सेतु के समानांतर बनाया गया है। 2017 में प्रधानमंत्री द्वारा आधारशिला रखी जाने वाली इस परियोजना के पूरा हो जाने से उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच की दूरी लगभग 100 किलोमीटर तक घट गई है। परियोजना खासतौर से भारी वाहनों की यात्रा को सुगम बनाएगी। समारोह के दौरान प्रधानमंत्री श्री मोदी 1900 करोड़ रुपए की लागत से बने राष्ट्रीय उच्च पथ 31 के बख्तियारपुर मोकामा सड़क और बक्सर में 6800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बने थर्मल पावर प्लांट का उद्घाटन भी करेंगे। इसके साथ ही मुजफ्फरपुर में नवनिर्मित होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र को देश को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री औरंगाबाद के दाऊदनगर, जहानाबाद, लखीसराय के बढ़ई और जमुई में जल निकासी योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से संजय किशोर।
पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा है कि ओटा सिमरिया पुल के उद्घाटन से राज्य के विकास को नया आयाम मिलेगा। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है।
उत्तर बिहार, दक्षिण बिहार, दो अलग अलग बिहार नजर आते थे, तो उसको कम करने में उन्होंने लगातार प्रयास किया, कई योजनाएं दी। उसमें एक बड़ा योजना, निश्चित रूप से एक सिग्नेचर स्कीम कह सकते हैं, वह है ओटा सिमरिया, जो अपने आप में इस कहानी को कहता था कि कैसे लालटेन युग में लोग, बिहार के लोगों को परेशानी में रहते थे, कैसे एक राजेंद्र सेतु से क्रॉस करने में बॉटल नेक बना रहता था। और ऐसे ऐसे 3 ब्रिज थे, कोइलवर का ब्रिज आपने देखा, महात्मा गांधी सेतु को देखा, ये दोनों ही ब्रिजेज एक तरह से बॉटल नेक तीनों बने हुए थे। आज माननीय प्रधानमंत्री के इस निर्णय के कारण ये तीनों जगह का ब्लॉकेज खत्म हुआ और उसका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट ओटा सिमरिया भी आज उद्घाटन के लिए तैयार है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2017 में इसका शिलान्यास किया, 2,000 करोड़ की लागत का यह ब्रिज।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के डीजीएम मीडिया प्रवीण त्यागी ने बताया कि इस पुल के बन जाने से राज्य की आर्थिक विकास को काफी मदद मिलेगी।
नया ब्रिज, हमारा 6-लेन का जो ब्रिज है, एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। साथ ही जो कॉमर्शियल व्हीकल्स हैं, जो हैवी व्हीकल्स हैं, उनको क्योंकि पुराने ब्रिज पर नहीं जाने दिया जाता था, तो लगभग 100 किलोमीटर के आसपास उनको एक्स्ट्रा ट्रेवल करना पड़ता था। तो किसी भी प्रदेश की इकोनॉमी के लिए, उसके इंडस्ट्री के लिए, अगर उसके हैवी व्हीकल्स को 100 किलोमीटर कम ट्रेवल करने का रिलीफ मिल जाएगा इस ब्रिज के माध्यम से, तो ये बहुत बड़ी सौगात होगी जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 22 तारीख को प्रदेश को।
केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने आज लोकसभा में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच 130वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया। 2 अन्य विधेयक भी पेश किए गए। 130वें संविधान संशोधन विधेयक के तहत भ्रष्टाचार के मामलों में 30 दिनों की जेल होने पर मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों और यहां तक कि प्रधानमंत्री को भी पद से हटाने का प्रावधान किया गया है। ऐसे मामलों में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर आरोपी को पद से हटा सकते हैं या फिर 31वें दिन उसे पद से मुक्त मान लिया जाएगा। विधेयक को लेकर विपक्षी दलों ने जोरदार हंगामा किया। हंगामे के बीच केंद्रीय मंत्री ने विधेयकों को संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी को भेजने की घोषणा की। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग प्रोत्साहन और विनियमन विधेयक 2025 पेश किया। श्री वैष्णव ने कहा कि इसका उद्देश्य ई खेलों और ऑनलाइन सोशल गेम्स को बढ़ावा देना तथा पैसा लेकर दी जाने वाली खतरनाक ऑनलाइन गेमिंग सेवाओं, विज्ञापन और उनसे जुड़े वित्तीय लेनदेन पर रोक लगाना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
इस विधेयक में पैसा लेकर ऑनलाइन खेलों की पेशकश करने, संचालन करने या प्रोत्साहन करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है। ऑनलाइन गेम से जुड़े कानून के उल्लंघन पर 3 साल तक की कैद और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है। अगर कोई इस कानून का दोबारा उल्लंघन करता है तो 3 से 5 साल तक की कैद और 2 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। यह विधेयक वित्तीय प्रणाली की अखंडता और देश की सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा करेगा। इसके अलावा यह जनहित में एक समान और राष्ट्रीय स्तर का कानूनी ढांचा स्थापित करेगा। यह विधेयक देश के युवाओं को ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग एप्स जैसे कि पोकर और रमी जैसे प्रलोभन वाले गेम से बचाएगा जो उन्हें आर्थिक लाभ के झूठे वादों के जरिए फंसाने का काम करते हैं, जिसके कारण पूरा परिवार आर्थिक संकट में आ जाता है। यह विधेयक सरकार की एक सुरक्षित, संरक्षित और नवाचार प्रेरित डिजिटल इंडिया की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जो नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज भी बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण सहित विभिन्न मुद्दों पर लगातार बाधित हुई। विपक्षी सदस्यों ने आज इस मुद्दे पर हंगामा जारी रखा। चुनाव आयोग ने कहा है कि 1 अगस्त को जारी मतदाता सूची पर 20 दिन बाद भी अब तक किसी राजनीतिक दल ने दावा आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने बताया कि प्रारूप प्रकाशन के बाद अभी तक 60,010 निर्वाचकों से सीधे दावा आपत्ति के आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 2,394 मामलों का निपटारा कर दिया गया है। इसके साथ ही 18 वर्ष और अधिक उम्र के 1,98,000 से अधिक नए मतदाताओं ने सूची में अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के 12 जिलों के बाढ़ प्रभावित परिवारों को 7,000 रूपये प्रति परिवार की दर से अनुग्रह राहत राशि के भुगतान का शुभारंभ किया है। पटना के संकल्प भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने 6,51,602 प्रभावित परिवारों को डीबीटी के माध्यम से अनुग्रह राशि का भुगतान किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री कुमार ने कहा कि 13 और 14 अगस्त को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के सर्वेक्षण के बाद लोगों तक राहत राशि तुरंत पहुंचाने का फैसला किया गया। उन्होंने कहा कि सितंबर महीने में भी राज्य के कुछ भागों में बाढ़ की स्थिति हो सकती है, इसे देखते हुए अधिकारियों को सतर्क रहना चाहिए। राज्य में करीब 84 लाख प्रधानमंत्री जनधन योजना खातों का सत्यापन किया जाएगा। योजना के लाभुकों को 30 सितंबर तक अपने बैंक खाते का सत्यापन KYC अनिवार्य रूप से कराने को कहा गया है। भारतीय स्टेट बैंक पटना मंडल के मुख्य महाप्रबंधक अनुराग जोशी ने बताया कि KYC नहीं कराने पर खाते बंद कर दिए जाएंगे। श्री जोशी ने बताया कि अभियान चलाकर पंचायतों में शिविर के माध्यम से पीएम जनधन बैंक खाता खोलने, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना और पीएम सुरक्षा बीमा योजना के लिए नामांकन लिया जा रहा है।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_ पटना पर जा सकते हैं।
जीएसटी पर गठित मंत्री समूह की बैठक में आज स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी हटाने को लेकर सर्वसम्मति बनी है। मंत्री समूह के अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दिल्ली में बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि प्रस्ताव को जीएसटी परिषद को सौंपा जाएगा।
सबकी इच्छा रही कि इसको पास किया जाए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रस्ताव स्पष्ट है कि सभी जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से कहा है कि इंश्योरेंस के सेक्टर में इंडिविजुअल या उनके परिवार के इंश्योरेंस को, हेल्थ इंश्योरेंस को फ्री की एक तरह से जीएसटी से मुक्त किया जाए, इस पर चर्चा हुई है सबका और इसका रिपोर्ट लेकर अब जीएसटी काउंसिल को मिल।
प्रदेश के विभिन्न भागों में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी। विभाग ने आज कटिहार और किशनगंज जिले में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।
वहीं रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, पटना समेत राज्य के दक्षिणी भागों में कई स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है।
दिनांक 21 अगस्त 2025 राज्य के दक्षिण भागों के जिलों के एक या दो स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है। राज्य के पटना, कैमूर, गया, रोहतास, औरंगाबाद, नवादा और जमुई के एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है।
देश आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी 81वीं जयंती पर याद कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवंगत नेता को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं नई दिल्ली में राजीव गांधी के समाधि स्थल वीरभूमि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सांसद प्रियंका गांधी समेत अन्य गणमान्य लोगों ने पूर्व प्रधानमंत्री को पुष्पांजलि अर्पित की। इधर पटना स्थित कांग्रेस प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम में प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने स्वर्गीय राजीव गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। शेखपुरा जिला कांग्रेस कार्यालय आजाद हिंद आश्रम में भी कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित की। अररिया पुलिस ने जोगबनी थाना क्षेत्र स्थित एक निजी बैंक में 5 लाख रुपए लूट की घटना का उद्भेदन किया है। इस संबंध में कटिहार के कोढ़ा थाना क्षेत्र के जुराबगंज में मुख्य आरोपी अनीश यादव के घर छापेमारी कर लूट की रकम बरामद कर ली गई है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। गोपालगंज जिले के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत कररिया पूर्व टोला में एक ईंट भट्ठे के निकट गड्ढे में डूब जाने से 2 बच्चों की मौत हो गई। कटिहार के कोढ़ा थाना क्षेत्र से पुलिस ने 6 डकैतों को भारी संख्या में हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रंजन कुमार सिंह ने यह जानकारी दी। कैमूर जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र अंतर्गत मुख्य बाजार स्थित एक निजी क्लिनिक में एक प्रसूता की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया और सड़क जाम लगाया। पुलिस ने क्लिनिक को सील कर दिया है और संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। दरभंगा की स्थानीय अदालत ने जिला अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जियाउर रहमान की हत्या के मामले में 5 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सुपौल के जिलाधिकारी सावन कुमार ने आज पिपरा प्रखंड में बन रहे लोहिया मेडिकल कॉलेज अस्पताल के निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को कार्य को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अगस्त को गया जी में आयोजित समारोह के दौरान 13,000 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 130वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया। भ्रष्टाचार के मामलों में 30 दिनों की जेल होने पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को पद से हटाने का किया गया है प्रावधान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 6.5 लाख से अधिक बाढ़ पीड़ित परिवारों के खाते में 7,000 रुपए की अनुग्रह राहत राशि भेजी। और प्रधानमंत्री जनधन खातों का 30 सितंबर तक सत्यापन किया जाना अनिवार्य, केवाईसी नहीं कराने पर बंद होंगे खाते। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।